ओम शांति। हम चाहेंगे कि आप सभी मिलकर मेरे बाद कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर में आप सभी का हमारी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आप सभी एजुकेटर्स पधारे हैं, भविष्य के आप शिल्पकार हैं, निर्माता हैं, तो भविष्य आप तब निर्माण कर सकेंगे जब पहले वर्तमान को निर्माण करें। वर्तमान श्रेष्ठ होगा तो भविष्य भी श्रेष्ठ होगा, और दूसरों को श्रेष्ठ तब बना सकेंगे जब स्वयं श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि हम ही उदाहरण बनेंगे औरों के लिए। तो प्रातःकालीन सत्र मेडिटेशन से संबंधित है, और अभी अभी आपने गीत सुना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, आत्मचिंतन से आत्म परिवर्तन और आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत सुंदर टूल है जिससे आत्म परिवर्तन होता है, परंतु उसके लिए आत्मचिंतन जरूरी है, और आत्मचिंतन करने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है, अर्थात खुद का ज्ञान। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों इस संसार में आया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहां है, और उसके लिए मुझे क्या करना है। ये बहुत सारे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस है जो मनुष्य अक्सर अपने लिए अंदर ही अंदर पूछते रहते हैं, लेकिन उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। विवेकानंद ने भी यही प्रश्न किया, स्वामी जी ने, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा आप कौन हैं, तो उसने यही कहा, मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। अब तक तो हम अपने शरीर का ही परिचय देते आए हैं कि मैं फलाने नाम का व्यक्ति हूँ, फलाने धर्म का हूँ, फलाने व्यवसाय का हूँ, जाति का हूँ, अपने शरीर का ही परिचय देते आए हैं। लेकिन ये जितने भी परिचय हम अपने देते हैं ये सब परिवर्तनशील है। इस जन्म में चलो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है पिछले जन्मों में भी यही होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगले जन्मों में भी वही होगा। तो मैं कौन हूं, एक शाश्वत शक्ति हूं जो इस जन्म से पहले भी थी और जन्म मृत्यु के बाद भी रहेंगी, वो मैं कौन हूं, उसको जानना ये मेडिटेशन का सर्वप्रथम कदम है। तो यहां जो हम सवेरे के सेशंस लेंगे ये इसी से संबंधित होंगे, एक्सप्लोरिंग माय स्पिरिचुअल आइडेंटिटी थ्रू राजयोग। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग की शिक्षा दी जाती है। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे बुद्धि में कई तरह तरह की डेफिनेशंस आती है योग की। योग के नाम पर आज कई योगा स्कूल खुले हुए हैं, और इन योगा स्कूलों में अक्सर करके शारीरिक क्रियाएं सिखाई जाती है, और यही कहा जाता है कि अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, इसलिए पहले बॉडी को हेल्दी करो तब माइंड को हेल्दी करेंगे। और आपको आज भी आधा घंटे के लिए थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइजेज ही बताई गई, लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो WHO के अनुसार 80-90% जो शरीर के रोग हैं वो साइकोसोमेटिक है, केवल 10-20% रोग कोई फिजिकल कारणों से होते हैं या हेरिडिटरी होते हैं या जो कुछ, बाकी 80-90% साइको है। साइको अफेक्ट्स द साइको विल अफेक्ट द फिजिकल। तो इसीलिए पहले आवश्यकता है कि हम मन को ठीक करें, और जब मन को हम ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली तन के 80-90% जो रोग है वो आएंगे ही नहीं, बाकी 10-20% का चलो इलाज करेंगे। तो इसके लिए पहले अपने मन को ठीक करने के लिए हमें ये समझना होगा मैं कौन हूं। तो योग का जो शाब्दिक डेफिनेशन है वो कोई लंबा चौड़ा नहीं है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, इट कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू कनेक्ट। तो किसी भी प्रकार के जोड़ को हम योग कहते हैं, और जैसे दूर जाना उसको वियोग कहते हैं, मिलना जुड़ना एक होना उसको योग कहते हैं, दो व्यक्ति आपस में मिलकर काम करते उसको सहयोग कहते हैं। हम कुछ बात सोचते हैं और वो बात हो जाती है तो हम कहते संयोग है। लेबोरेटरी में हम प्रयोग करते हैं A+B=C, तो सहयोग संयोग प्रयोग ये सारे योग से जुड़े हुए शब्द हैं। तो योग माना मिलना और वियोग माना बिछड़ना, दूर जाना, अलग होना। तो इसलिए जब इस शाब्दिक अर्थ को हम समझते हैं तो उसके आधार से हम तीन पहलू देखेंगे। पहला पहलू है फिजिकल लेवल में जोड़, हमें बिजली चाहिए तो बिजली घर से योग चाहिए, और बिजली घर से योग होने के लिए तारों को जोड़ना होता है, फ्यूज वायर को जोड़ना होता है, कॉपर टू कॉपर, तब बिजली आएगी। हम दूसरा लेवल देखें जिसको मानसिक लेवल कहेंगे, हम किसी को याद करते हैं मन से और सचमुच वो व्यक्ति उसी समय हाजिर हो जाता है, पहुंच जाता है, हम कहेंगे अरे क्या योग था मेरा, मैंने आपको अभी अभी याद किया और आप आ गए। तो मन से किसी को याद करना भी योग है, क्योंकि मन से मिलन हो गया फिर फिजिकली बाद में मिलन हुआ, जैसे किसी की खींच हुई कि वो मुझे याद कर रहा है। परंतु जो तीसरा लेवल है वो है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, भौतिक मानसिक आध्यात्मिक। और ये जो स्पिरिचुअल लेवल है योग का, जिसका ही वर्णन गीता में आता है, एक एक चैप्टर योग से संबंधित है, और उसी के अंतर्गत भगवान के महावाक्य हैं, हे अर्जुन तू मुझे याद कर, तो मैं इस राजयोग से तुम्हारे जन्म जन्म के पाप खत्म करूंगा, नष्ट करूंगा। तो वो योग जिससे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाए वो योग है राजयोग, जो स्वयं भगवान हमें सिखाते हैं। और उसमें कौन सा संबंध है किसका किसके साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ। तो जितने भी अन्य प्रकार के योग है वो सब फिजिकल मेंटल चाहे व्यक्ति को याद करो, वस्तु को याद करो, वैभव को याद करो, कोई घटना को याद करो, कोई स्थान को याद करो, वो सब मेंटल लेवल पर है। चीजों को जोड़ते हैं वो फिजिकल लेवल पर है। अब फिजिकल लेवल पर हम देखते हैं यूट्यून और रेडियो कि कोई रेडियो स्टेशन चाहिए तो वही फ्रीक्वेंसी मीटर बैंड वेवलेंथ पर हम अपनी रेडियो की सुई रखेंगे। हम कहेंगे इसको ट्यूनिंग और वो रेडियो स्टेशन की आवाज आपकी रेडियो पर पहुंच जाएगी। तो वो भी एक योग है। दो तारों को मिलाते फिजिकली तो उससे जो पावर हाउस है उससे कनेक्शन जुड़ जाता है और हमारे घर में बिजली आती है। हम दूध में चीनी मिलाते हैं मीठा करने लिए और जैसे चीनी मिलाई दूध मीठा हो जाता है। तो दूध और चीनी का मिलन हुआ तो चीनी का गुण शुगर का गुण दूध में आ गया। अब ये फिजिकल लेवल पर जो योग है उसके आधार से हम समझ सकते हैं जिसके साथ योग है उसका मिलन होते ही वो अनुभव होने लगता है। अब इसको मेंटल लेवल पर ले, चाहे कोई दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना, एक ट्रैजिक इंसिडेंट कई साल पहले हुई थी मानो, और वो ट्रैजिक इंसिडेंट आप अभी याद कर रहे हो जबकि न वो व्यक्ति है न स्थान है न वो परिस्थिति है, वो तो बहुत साल पहले की बात थी, लेकिन आज भी अगर आप उसको याद करेंगे आपका रूह कांपने लगेगा कि वो बात कहेंगे भाई याद मत दिलाओ, आप कहेंगे प्लीज। तो आपका वो योग उसके साथ हो गया और उसी वक्त आपको अनुभव होने लगेगा, हालांकि वो अभी है नहीं। एक सुखद घटना आप याद करते हैं, बहुत सुखद घटना, अभी याद करते ही आपका चेहरा खिल जाएगा और आपसे कोई पूछ भी लेगा क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, आप कहेंगे कुछ याद आ गया। इसे कहते हैं ना, तो कुछ याद आ गया माना आपका मन उसमें जुड़ गया और आपको वो अभी अनुभव होने लगा, इसीलिए आप मुस्कुरा दिए। तो ये मानसिक लेवल पर भी योग हम करते ही हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए हम सब योगी हैं, सब योगी हैं, क्योंकि किसी न किसी को सदा याद करते हैं, मन कुछ न कुछ सदा सोचता है और जिसके विषय में सोचता है उसके साथ योग है। सो सिंपल। तो एक हिसाब से अब सभी योगी हैं, लेकिन आज हम आपको राजयोगी बनाना चाहते हैं। राजयोग किसको कहेंगे? टू कंसिडर वन सेल्फ टू बी अ सोल एंड कम्युनिकेट विद द सुप्रीम इज कॉल्ड राजयोग। तो योगी तो सभी हैं हम, लेकिन राजयोगी अर्थात जब इस मन को परमात्मा में लगाते हैं, और जब मन को परमात्मा में लगा सके तो हम राजयोगी कहलाएंगे। अब मन को परमात्मा में लगाने के लिए जब हम कहते हैं तो फिर शिकायत आती है, क्या करे बहन जी, ये मन तो बड़ा चंचल है। अर्जुन ने भी यही शिकायत की, जब भगवान ने कहा इस मन को मेरे में लगाओ तो अर्जुन की भी यही शिकायत थी। तो हम सब अर्जुन की तरह ही शिकायत करते हैं, ये मन तो चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, एक घोड़े की तरह है जो बेलगाम दौड़ता रहता है, इस मन को वश करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को या वस्तु को, कोई स्थान घटना परिस्थिति को हम याद करते ये शिकायत कभी नहीं करते, हम तो इतने उसमें मग्न हो जाते जो हम भूल ही जाते और बातें भी, तो उनके लिए ये शिकायत क्यों नहीं है? लेकिन ईश्वर के लिए ये शिकायत है। हम पूजा करने बैठते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, तप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, मन ईश्वर में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मन लगता नहीं है। तो क्यों नहीं लगता है मन? और किसी के लिए शिकायत नहीं है, पर ईश्वर के लिए शिकायत है। तो क्यों नहीं लगता मन? इसका अगर हम कारण देखें तो कारण अनेक है। तो कैसे राजयोग हमको मदद करता है मन को परमात्मा में लगाने में? तो राजयोग माना सभी योगों का राजा, जिसमें हम राजा बनते हैं। सबसे पहले हम अपने इंद्रियों का राजा बनते हैं। आज मन ईश्वर में क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन इंद्रियों का गुलाम है। जहां इंद्रियां खींच के ले जाती है वहीं मन चला जाता है। जब कभी जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस है, ज्ञान इंद्री या कर्म इंद्री, ये रस जो हम लेते हैं इंद्रियों से, तो मन उनके वश हो जाता है। कुछ दिल हुई खाने की, बस मुझे वही चीज चाहिए, अरे भाई अभी कहां से आएगी? लेकिन नहीं, वो रस बैठ गया उस इंद्री का, जीभ रस, मुझे वही चाहिए। कन रस, यही मुझे संगीत सुनना है, यही देखना है, यही स्पर्श करना है। और यही जो इंद्रियों का रस है, ये मन को अपनी ओर खींचता है। लेकिन राजयोग से हम इन इंद्रियों का राजा बनते हैं, क्योंकि मैं कौन हूं ये पहचान मिलती है। फिर दूसरा, हम मन का भी राजा बन सकते हैं। हम जो चाहे वही सोचें, ये नहीं कि चाहे हम कि मैं कुछ और सोचूं और सोच कुछ और चल रहा है। कई बार हमारी शिकायत होती है, क्या करें मैं वो भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है, मैं तो भुलक्कड़ हो गया हूं, कई बार ऐसे भी कहते हैं, याद ही नहीं आता है। और किसी बात के लिए हम ये कह देते हैं, क्या करें भूल ही नहीं सकता हूं। अब भुलक्कड़ होते तो वो बात भी भूल जाती ना, वो उसके लिए फिर क्यों कहते हैं भूल ही नहीं सकता हूं। जिनको डिमेंशिया होती है तो वो तो कुछ भी याद नहीं करते, खाया वो भी भूल जाता है, भुलक्कड़ हो जाते हैं। तो कोई बात तो भूलती नहीं और कोई बात तो याद आती नहीं, इसका मतलब मन भी हमारे वश में नहीं है। तभी तो कहते ना चंचल है, पापी है। तो राजयोग हमें मन का भी राजा बना देता है। हम जो चाहे वही सोचे और जो न चाहे वो नहीं सोचे, मन भी हमारे वश में। और फिर जब मन को हम अपने वश में कर सकते हैं तो फिर सबका दिल भी जीत सकते हैं। किसको हराना, युद्ध से या हथियारों से, ये कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन उसका दिल जीतना, उनको समर्पित कराना, अपना बना देना, ये बहादुरी है ना? आतंकवादी को मार गिराया, ये क्या बड़ी बात की आपने की? ठीक है, हथियार है आपके पास, लेकिन उसको सरेंडर कराना, उसके अंदर में परिवर्तन लाना, ये बड़ी बात है। तो राजयोग हमें सबका दिल जीतना सिखाता है। कोई भी व्यक्ति आज तक बाहुबल से, युद्ध के बल से, हथियारों के बल से किसी को जीत नहीं सका है। सिकंदर ने बहुत कोशिश की सारी दुनिया को जीतने की और अंत में हाथ खाली गया। लेकिन अगर हम सबका दिल जीत सके तब हम विश्व का भी राज्य ले सकते हैं, जिसके लिए कहा गया है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने, नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने। लक्ष्मी माना लक्षण वाली, घर में बहू आती है कहेंगे लक्ष्मी आई, पर वही लक्ष्मी कुलक्षणी भी निकल सकती है, कुल का नाश भी कर सकती है। क्योंकि जीवन में अगर मूल्य है तो जीवन का भी मूल्य है, और जीवन से मूल्य चले गए तो जीवन का मूल्य भी खत्म हो गया। परंतु राजयोग से वो मूल्य आते हैं जिससे हम मानव देव बन जाते हैं। तो वो देव कैसे बने, उसके लिए जो देवों का देव परमात्मा है उनसे मन की तार जुड़नी चाहिए। सो व्हाट इज राजयोग? इट इज द सुप्रीम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ योगास, जहां हम सबसे ऊंचे परमात्मा के साथ मन की तार जोड़ते हैं। इसीलिए राजयोग माना सभी योगों का राजा, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे परमात्मा से योग होता है, संबंध होता है। और दूसरा इसलिए भी राजयोग है क्योंकि जो तरीका है परमात्मा से जुड़ने का वो भी सबसे ऊंचा है। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट मेथड फॉर कनेक्टिंग विद द सुप्रीम। और तीसरा जो प्राप्ति है उससे वो भी सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंची है। सबसे ऊंची प्राप्ति हम किसको कहेंगे? कोई धन की प्राप्ति करते हैं, कोई स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं, कोई यश नाम मान शान मर्तबा महिमा जो भी वो प्राप्ति करते हैं, मान लो उसके पास सब कुछ है जीवन में, फिर भी अगर हम उनसे पूछते हैं कि आपका आपके जीवन में तो सब कुछ है तो आप संतुष्ट हो क्योंकि सब कुछ है, क्या कमी है? तो कहता है बहन जी सब कुछ तो है, बस शांति चाहिए। तो सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है, है? सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट किसको कहेंगे? शांति। बाकी सब कुछ है और शांति नहीं है तो भी जीवन किस काम का? और अगर शांति है, सिंपल लिविंग है, हाई थिंकिंग है, तो भले बहुत कुछ जो हमारे लग्जरीज है वो ना भी हो लेकिन आवश्यकता अनुसार सब कुछ है तो फिर सब कुछ है। इसीलिए कहा जाता है ना, नीड्स आर नॉट मेनी बट वॉन्ट्स कैन बी अनलिमिटेड, एंड व्हेन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड यू आर नेवर सैटिस्फाइड। तो इसीलिए हमारा जीवन सिंपल भी हो जाता है, श्रेष्ठ भी हो जाता है, क्योंकि ऊंची थिंकिंग हो जाती है। तो इसलिए राजयोग से हमें सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट्स मिलती है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हम अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो राजयोग एनेबल्स अस टू क्रिएट न्यू एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सेस टू लाइफ, जो कल भी आपके रिसेप्शन सेशन में हुआ, पॉजिटिव सोचना, हर परिस्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड लाना। तो राजयोग इज अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेल्फ एंड गॉड रियलाइजेशन। अब इसको हम समझेंगे। राजयोग में भी अष्टांग योग है। जब हम अष्टांग योग कहते हैं तो भाई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये आठ बातें कहते हैं। तो जो यम और नियम है इनको तो भूल ही गए हैं, कितने यम नियम भी है उसके लिए। प्राणायाम को याद करते हैं पर प्रत्याहार, प्रत्याहार माना टू विड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल सेंसेस। फिर ध्यान किसका, धारणा कौन सी, समाधि माना क्या, सम बन जाना, वो बातें तो भूल ही जाते हैं, खाली बस हट जो शारीरिक क्रियाएं हैं वहां तक ही सीमित हो जाते हैं। योग में तो ये सब बातें आती है। इसलिए योग जब हम गीता पढ़ते हैं उसमें एक एक चैप्टर एक एक योग से जुड़ा हुआ है। सहज योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, समत्व योग, ज्ञान योग, अब इन सब का अर्थ है और ये सब राजयोग में सम्मिलित है। इस राजयोग के लिए ज्ञान चाहिए, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, ये ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं, जिसको ही विद्या कहते हैं, सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वही है जो हमें मुक्ति दिलाए दुखों से, पापों से, रोगों से, शोकों से, दुख अशांति से, वही सत्य ज्ञान है। और जब वो सत्य ज्ञान स्वयं का, परमात्मा का में मिल जाता है, तो मन सहज परमात्मा में लग जाता है, वो सहज योग हो जाता है। उसके लिए शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धि मन को अपने वश में रख के चलाती है। जैसे ड्राइवर कंट्रोलर है, तो गाड़ी उसके लिए चलाना एक खेल है, इट्स अ गेम। लेकिन अगर गाड़ी मालिक हो जाए, ड्राइवर का कंट्रोल छूट जाए, ब्रेक फेल हो जाए, तो फिर तो एक्सीडेंट, केओस, डेथ, सोरो, ये सारे सब बातें आएगी। इसलिए बुद्धि योग है। कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। सोचने का काम मन का, पर समझ का काम बुद्धि का, फिर कर्म। इंद्रियां इस थर्ड स्टेज। पहले मन से सोचा, बुद्धि से निर्णय किया कि मुझे क्या करना है, फिर कर्म में लाना है। लेकिन जब हम बॉडी कॉन्शियस है, ईगो में है, तो सोच समझ कर कर्म नहीं करते। पहले कर्म कर लिया एक्सटेम्पो, विदाउट थिंकिंग, विदाउट रियलाइजिंग व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी, और वो फिर उसके बाद समझते हैं ये गलत किया, फिर सोचते अभी क्या करें, पर इट इज टू लेट। कर्म तो हो ही गया, उसका फल तो मिलेगा ही। इसीलिए ये बुद्धि योग है। बुद्धि मन को दिशा दे परमात्मा के तरफ। फिर ये कर्म योग भी है। कर्म योग का बहुत सुंदर अर्थ है गीता में, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार हो, लेकिन फल की चिंता मत करो। बस कर्म अच्छा करो, फल तो मिलेगा ही, वो ईश्वर पर छोड़ दो। उसको कहेंगे सच्चा कर्म योग। और वो कर्म परमात्मा की याद में हो, तो वो कर्म सदा ही अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, और उसका फल भी अच्छा ही होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए कर्म योग का सिद्धांत बहुत ऊंचा है। और जब सच्चा वो कर्म हम करते हैं, तब परमात्मा के प्रति हमारा जो भाव वो इतना ऊंचा हो जाता है, क्योंकि दिल साफ है। तो दिल साफ तो मुराद हासिल। हम हिम्मत रखते हैं, परमात्मा की मदद मिलती है, और वही सच्चा भक्ति योग है। भक्ति माना प्रेम, ईश्वर से प्रेम। और सचमुच अगर ईश्वर से सच्चा प्रेम है, तो हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के विरुद्ध हो, जिससे परमात्मा का नाम हम बदनाम करें। हम किसके बच्चे हैं? यही कहते हैं, भगवान के बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा नालायक निकलता है, तो पिता का भी तो नाम बदनाम होता है ना, केवल बच्चे का नाम थोड़ी बदनाम होता है। तो भक्ति माना ईश्वर से सच्चा प्रेम। हमारा हर कम कर्म ईश्वर का नाम रोशन करे। और जब वो प्रेम है, तब संन्यास योग। संन्यास का मतलब घरबार छोड़ना नहीं। कई समस्या, अगर हम योगी बन जाएंगे तो क्या संन्यासी बनना पड़ेगा? योगी सन्यासी नहीं होता है। योगी तो अपने घर परिवार में भी रहता है, लेकिन वो राज ऋषि होता है। राजा भी है और ऋषि भी है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है। फंस गए तो दुखी हो जाएंगे। जिसको कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, राजा जनक की तरह। इसलिए इसको हम सन्यास योग कैसे कहते हैं? घर गृहस्थी का सन्यास नहीं, परिवार का सन्यास नहीं, जिम्मेदारियों का सन्यास नहीं, लेकिन बुराइयों का सन्यास, विकारों का सन्यास, जिनको हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। और जब ये हम सीख लेते हैं तो फिर हमारा सच्चा जीवन समत्व योग बन जाता है, समत्व योगा बैलेंस। केवल पद्मासन करके हम बैलेंस रखें यही योग नहीं है, पद्मासन सब नहीं कर सकते हैं। शीर्षासन करके हम बैलेंस रखें हम ये भी सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन पद्म जैसा जीवन तो बना सकते हैं ना, कमल फूल समान जीवन, कीचड़ में रहते भी न्यारा। और बैलेंसिंग ऑन हेड नहीं, लेकिन बैलेंस ऑफ माइंड, हर बात में बैलेंस ऑफ माइंड, इमोशनल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, हमारे इमोशंस भी हमारे कंट्रोल में हो। मन तो हो ही लेकिन इमोशंस भी जरूर हो, इंद्रियां भी हो, उसको हम राजयोग कहते हैं। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ राजयोग है। जब हम इस प्रकार का राजयोग सीखते हैं तो हमारे अंदर कई बेनिफिट्स आती है। ये सारी बेनिफिट्स लिखी गई है, कैसे जजमेंट डिसीशन पावर शार्पन होता है, बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पर्सनालिटी एनहेंस और विल पावर स्ट्रेंथन, और पीस शांति तो आती ही है, हम पापों से बचते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, संबंध सुधरते हैं और परम आनंद की अनुभूति होती है। अब इसके लिए हमें ये नहीं है कि भाई मैं तो फलाने धर्म का हूँ, फलाने जाति का हूँ, योग हमारे लिए नहीं है, या फलाने आयु का हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तब ये करूँगा, अभी तो खाओ पियो मौज करो। तो ये एज फैक्टर या रिलीजन फैक्टर, ये जितने भी बैकग्राउंड्स हैं, ये योग में विघ्न नहीं है। योग हम कोई भी कर सकता है, किसी भी आयु, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, क्योंकि इट जस्ट नीड्स टू मेक यू नो लिसन टू योर इनर वॉइस, दैट्स ऑल। अंतरात्मा की आवाज सुनो। हम अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं, फिर कहते हैं मन खाता है, क्योंकि हम आत्मा की आवाज को दबा दिया, आई वेंट अगेंस्ट माई ओन सेल्फ। तो इसलिए वॉट ही नीड्स टू डू इज टू जस्ट द चॉइस इज टू लिसन टू हिज इनर वॉइस। और जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो योग तो सबके लिए है। अब हमें पहले ये समझना होगा कि योगी है कौन, यानी मैं जो योगी हूं मैं कौन हूं। ये सदियों से प्रश्न चला आता है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी यही प्रश्न किया, हु एम आई। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन्होंने भी यही प्रश्न किए, नो दाई सेल्फ। नेचुरली आई डोंट नो माई सेल्फ, इट्स अ रिडल विच हैज बीन कमिंग डाउन सिंस एजेस। तो मैं कौन हूं? अब आप कहेंगे चलो मैं धर्म जाति या प्रांत देश ऑक्यूपेशन ये सब मैं नहीं हूं, मैं एक मनुष्य हूं। पर जब मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य का भी मतलब क्या है? मनुष्य का मतलब ये नहीं है कि ये हड्डी मांस का मैं पिंजरा हूं, मनुष्य इज नॉट दैट। मनुष्य मीन्स चेतनता, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन पार्ट तो चलो ये शरीर है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड ह्यूमस, ह्यूमन विच मीन्स सॉइल, पंच तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वो शरीर जरूर है। लेकिन बीइंग पार्ट जो चैतन्य शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, वो मैं हूं। क्योंकि वो मैं कॉन्शियसनेस चेतना पूर्व से आई हूं और आगे भी जाऊंगी। ये शरीर तो इस जन्म में मिला, खत्म हो जाएगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन आत्मा को याद किया जाता है, जब खास किसकी मृत्यु होती है तब यही कहते हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना। शरीर तो शांत हो गया, मृत्यु का मतलब ही यही है, जब मर जाता है तो क्या कहते हैं, ऐसे सीधा नहीं कहेंगे मर गया, कहेंगे इनका देह शांत हो गया, ब्रीदिंग खत्म हो गई, हार्ट बीट बंद हो गया, सब खत्म, देह शांत हो गया। पर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो वास्तव में मैं कौन हूं, कहेंगे भगवान के पास गया। अब शरीर तो वहीं पड़ा है, वो तो भगवान के पास नहीं गया, तो आत्मा गई। तो मैं कौन हूं, शरीर या आत्मा, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। वास्तव में जब हम कहते परम आत्मा, हम परमात्मा के बच्चे, शरीर का पिता तो है जिनके हम बच्चे, फिर परमात्मा को हम पिता क्यों कहते हैं, वो किसका पिता है, वो आत्मा का पिता है। इसीलिए पंच तत्वों जो शरीर है वो पंच तत्वों को वापस मिल गए और आत्मा परमात्मा में गए, के पास गए, क्योंकि वो तो उसकी रचना है ना, उनसे आई है, उनके पास जाएगी। तो मैं कौन हो गई, इस शरीर के अंदर विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा। अब आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आत्मा ड्राइवर है, बिना ड्राइवर के गाड़ी, आपके पास बहुत मर्सिडीज गाड़ी हो लेकिन ड्राइवर है ही नहीं, गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है तो फायदा क्या। आपके पास बहुत सुंदर डिब्बी है और जो हीरा रखने की डिब्बी है, पर हीरा है ही नहीं, वो डिब्बी किस काम की, चाहे सोने की क्यों ना हो। आपकी आपका बहुत अच्छा मकान है लेकिन अंदर रहने वाले कोई भी नहीं है, तो मकान की पूजा करेंगे क्या। मंदिर में भी मूर्ति हो तभी तो उस मंदिर का महत्व है, रथ हो तभी, रथ में रथी हो तभी तो रथ का महत्व है, और वस्त्र बहुत सुंदर है लेकिन पहनने वाला कोई नहीं। तो आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है तब कहते हैं जन्म, और जब शरीर रूपी वस्त्र त्यागती है तब कहेंगे मृत्यु। आत्मा का तो न जन्म है न मरण है, न जलती है न कटती है न सूखती है न गीली होती है। और ये जीवन एक यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, केवल एक जन्म ही यात्रा नहीं है, ये तो वस्त्र बदलना है। तो जब हम ये बात समझते हैं तो इस अंतर को समझने के आधार पर हम खुद को अनुभव कर सकते हैं कि ये शरीर तो फिजिकल है, ये मैं नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं। ये शरीर तो मॉर्टल है, विनाशी है, एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना एज सर्टेन एज डेथ, ये कभी हो ही नहीं सकता कि शरीर व्यक्ति हो और वो कभी मरे नहीं, जरूर मरेगा एक दिन, क्योंकि ये शरीर विनाशी है। परंतु मैं अविनाशी हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। मैं अजर हूं माना बुढ़ापा आत्मा को नहीं आता है, शरीर को जरूर आता है। अमर हूं, कभी मरती नहीं हूं, अविनाशी हूं, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती हूं, और क्योंकि अविनाशी हूं तो अनादि भी हूं, इसलिए सत्य हूं। सत्य की डेफिनेशन बहुत गहरी है। सत्य की डेफिनेशन है जो अनादि हो, जो अविनाशी हो, जो अपरिवर्तनशील हो, जो नित्य हो, और वो मैं हूं। और शरीर विनाशी है इसीलिए बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। तो जब हम ये समझने लगते हैं कि मैं वो आत्मा हूं, तो फिर कई प्रकार के स्टेटमेंट्स देते हम। कोई कहेगा ठीक है मेरे अंदर एक आत्मा है, आई हैव अ सोल इन मी, तो मेरे अंदर आत्मा है। कोई फिर कह देते हैं कि मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। ना व्हाट डू दिस टू स्टेटमेंट्स मीन, मेरे अंदर एक आत्मा है माना मैं शरीर हुआ और मेरे अंदर एक आत्मा है जो मेरे से अलग है, या तो कहेंगे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, इसका मतलब शरीर भी मैं नहीं हूं और आत्मा भी मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन। फिर तीसरा वाक्य है आई एम अ सोल इन माई बॉडी, Now, which is the right statement? I am a soul or I have a soul? क्या कहेंगे? I am a soul. क्योंकि ये कौन बोल रहा है? Soul चली गई तो वो बोलेगा क्या कि I am this body? नहीं, body तो जड़ हो गया. But I am a soul in this body. So this is the correct statement. Now, what is soul? क्या है आत्मा? आत्मा कई कहते हम कैसे माने आत्मा? आत्मा दिखाई तो देती नहीं है. मनुष्य मर जाता है, कैसे चली गई आत्मा पता भी नहीं चलता है. शरीर तो वहीं पर गिर जाता है, हाँ, खत्म. तो क्यों नहीं दिखाई देती आत्मा अगर है तो? क्योंकि आत्मा प्राकृतिक नहीं है. ये आंखें प्राकृतिक है, दे आर मेड ऑफ मैटर. तो जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक चीज ही देख सकती है. जो प्राकृतिक नहीं है उसको ये आंखें कैसे देख सकेगी? प्रकृति में भी सब कुछ नहीं दिखाई देता है. आपको बहुत सूक्ष्म कुछ जीवाणु देखना है तो माइक्रोस्कोप चाहिए. आपको बहुत दूर कोई चीज देखनी है, हाँ, कोई प्लैनेट या कोई स्टार या कोई, तो टेलीस्कोप चाहिए. यू नीड सम मींस. तो ये आंखें भी सब कुछ नहीं देख सकती है, वैसे भी नहीं देख सकती है. चलो, प्रकृति के अंदर कई ऐसे सूक्ष्म शक्तियां हैं. प्रकृति की शक्ति है ये आवाज, इट इज फिजिकल ना, यू कैन हियर. इसके लिए फिर कान चाहिए, ये आंखें थोड़ी सुनेगी. आंखों का काम केवल देखने का है. तो हम देखें कि एक एक अंग का अपना काम है, पर इन सब अंगों को के द्वारा करने वाला मैं एक ही हूं. आंखों द्वारा देखने वाली या कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, तो ये तो सब साधन हो गए. ये माइक्रोफोन नहीं होता तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती. इसलिए ये साधन जरूर है पर ये साधक नहीं है. यही डिफरेंस है. तो साधक मैं आत्मा हूं, साधन ये इंद्रियां हैं. तो जब हम ये समझते हैं तो मैं साधक हूं, तो वो साधक क्या चीज है? व्हाट इज इट? इट इज कॉन्शियसनेस. जब हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उस कॉन्शियसनेस की तीन फैकल्टीज है. पहली फैकल्टी है मन. मन भौतिक नहीं है. कोई भी न्यूरोसर्जन, ब्रेन सर्जन, जो ब्रेन की सर्जरी करता है, ट्यूमर निकालता है या बहुत कुछ करता है, वो कभी नहीं ये बता पाएगा कि मन का स्थान कहाँ है ब्रेन में. इफ इट वुड बी फिजिकल, ही वुड पॉइंट आउट ये मन या ये मन है. क्योंकि मन फिजिकल है ही नहीं, मन सूक्ष्म है. मन की स्पीड अनगिनत है, अनंत है. मन की स्पीड, फिजिकल स्पीड तो हम माप सकते हैं. सूर्य करोड़ों मील दूर है हमसे, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि सूरज की पहली किरण जब धरती पर पहुंचती है तो 8 मिनट लगते हैं. वी कैन मेजर द इन अ डिस्टेंस ऑफ द सन बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. तो और आइंस्टाइन ने उसी का इक्वेशन दिया, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट. इतनी एनर्जी निकलती है एक एटम से. तो वो जैसे फिजिकल एनर्जी है, एंडलेस है, फिर भी वो इक्वेशन है, इट हैज सम लिमिट. पर मन की एनर्जी, सूरज की किरण निकली और धरती पर पहुंची 8 मिनट लगते, पर मन से आप सूरज तक पहुंच जाओ कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी भाई? क्या इक्वेशन देंगे? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. बस सोचा और मन सूरज तक पहुंच गया, वो गर्मी जैसे महसूस होने लगी. इट टेक्स नॉट इवन अ सेकेंड, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन भी कितना फ्रैक्शन, पॉइंट पॉइंट. सो व्हाट्स द स्पीड ऑफ द माइंड? Unlimited. So what's the energy of the mind? Unlimited. अब mind क्या है? फिर mind के ऊपर intellect है, बुद्धि है. फिर वो subconscious है, personality traits है वो. जिसको हम संस्कार कहते हैं. Subconsciousness is nothing but your संस्कार्स. जो आत्मा अपने साथ ले आती है. इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, ये भाग्य लेकर आया. और जब मरता है तो क्या कहते हैं कि ये अपना कर्म लेकर गया. और वो कर्म तो फिजिकल थे, लेकिन वो कर्म कैसे लेके गया, संस्कार के रूप में लेके गया. और वो ही फिर जन्म लिया, वो भाग्य रूप में आया और वो संस्कार वैसे ही इमर्ज हुए. अब इसको हम समझेंगे. So what is mind? It is your thought power. ये thought power ये आत्मा की शक्ति है. It's not physical. Your thinking, your feeling, your experiencing, your imagination, your forming ideas, all that is the work of the mind. And it is the greatest but least understood energy resource of the universe. When we understand and harness this energy, जैसे physical energies को harness करते, we tap those energies, then we can master our life. अब ये है mastering the life के लिए पहले मन की शक्ति को सही रूप में use करना. So this is called mind, और ये आत्मा की शक्ति है. लेकिन मन तो बहुत कुछ सोच लेता है. कहते हैं एक मिनट में, अगर नॉर्मल मन है, कुछ ज्यादा सोच नहीं चलते मन में, तो भी 30 सोच तो एक मिनट में आते ही हैं. 30 सोच माना, अगर कहेंगे 2 सेकंड में एक सोच, अगर 60 सेकंड्स इन 1 मिनट, तो एक सेकंड, 2 सेकंड में, सॉरी 2 सेकंड में एक सोच. बट इफ यू आर टेंस्ड, टेंशन में है, स्ट्रेस, तो कितनी फास्ट स्पीड होगी आपके थॉट्स की, आप सोचो. 1 सेकंड में 2 सोच ऐसे भी हो सकता है, 2 सेकंड में 1 सोच की वजह और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं. वाई 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 वाई, वही प्रश्न बार बार उसी को हैमर करते हैं और फिर दिमाग थक जाता है. यू हैव लॉस्ट योर मेंटल एनर्जी. फिर निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है. इसीलिए नेवर गिव decisions व्हेन यू आर इन एन एंग्री स्टेट. नेवर गिव decisions बिकॉज दे विल नेवर बी राइट, बिकॉज यू आर स्ट्रेस्ड. एंगर कम्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस लीड्स टू एंगर एंड एंगर लीड्स टू स्ट्रेस. दे आर इंटरकनेक्टेड. सो नेवर गिव एनी बिग decision एट दैट टाइम. फर्स्ट कूल डाउन, देन योर इंटेलेक्ट विल वर्क बेटर. इसीलिए थॉट पावर को समझना है. फिर बुद्धि क्या है? क्योंकि मन में सोच तो बहुत आते हैं, लेकिन आप हर सोच को तो कर्म में नहीं लाते हो ना. तो बुद्धि क्या है? वो इवैल्यूएट करेगी, वो रीजनिंग करेगी. ये करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, ये करेंगे तो क्या क्या परिणाम होगा. इट डिसर्न्स, इट डिसाइड्स, इट अंडरस्टैंड्स, एक्सेप्ट और रिजेक्ट. नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है. तुरंत, ये बुद्धि का काम है. जैसे चाय छानते हैं तो पत्ती तो छन्नी में रह जाएगी, जो चाय पीने की है वो कप में आएगी. इसीलिए इट एक्ट्स लाइक ये छानी की तरह काम करेगा. तो बुद्धि अंडरस्टैंडिंग पावर है. फिर हम देखते हैं बुद्धि की तुलना हम किसी स्केल्स के साथ भी कर सकते हैं. स्केल में 3 चीजें होती है. एक होती है सीधी डंडी, वर्टिकल, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल, और तीसरे है पलड़े. 3 चीजें ये एक स्केल में होते हैं. सो व्हाट इज इंटेलेक्ट? द नीडल इज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. जब हम मन को परमात्मा में लगाते हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन हमारी इतनी अच्छी हो जाती है और वो नीडल अपराइट रहती है. The rod is of unbiased attitude. Unbiased. हम कई बार लोभ के वश हो जाते हैं, ईर्ष्या के वश हो जाते हैं, तो हम गलत डिसीजन देते हैं. So we become biased, किसी का पक्षपात कर लेते हैं क्योंकि उनसे कुछ मिलता है. So my decision will not never be right. So unbiased हो, बिना किसी पक्षपात के, और वो परमात्मा की स्मृति में हो. And the weight जो हम एक तरफ रखते हैं पलड़ों में, वो weight values का हो कि मुझे वही कर्म करना है जिसमें values हो. अब वो अगर बुद्धि में है तो देखो हमारा decision भी right होगा. तो one side is wisdom and on the other side is your inner voice. ये हमें सदा ही सही निर्णय देते हैं. और जब हम इस बात को समझते हैं तो हम सही actions करेंगे, तो वही subconscious बन जाएगा. So what is संस्कार? तो मन, बुद्धि और संस्कार, your subconsciousness are your habits. Whatever you repeatedly do, they become your habits. They are your tendencies, your memories, आपकी talents, आपकी qualities, जो hidden है, वो उस समय पता नहीं चलती है, but when you use them, then you are able to realize that you have them within you. So इसको हम कहते हैं संस्कार. जैसे कई छोटे बच्चे बचपन से ही कितने टैलेंटेड होते हैं, उनको किसने सिखाया नहीं, लेकिन कितना अच्छा गीत गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, किसी ने नहीं सिखाया. ये पूर्व जन्म के संस्कार वो आत्मा अपने साथ में ले आई. कई बार हम ये भी देखते हैं, ये आजकल इसका बहुत ही चर्चा है, खास करके मेडिकल साइंस में भी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस. अब वो ऑपरेशन थिएटर पर ऑपरेशन हो रहा, अचानक दिल की धड़कन बंद हो गई, ऐसे लगा जैसे डेड, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जाग जाता है और जागने के बाद बताता है कि जैसे मैं ऊपर चला गया और मैं अपने शरीर को देख रहा था. मेरी वाइफ, मेरे बच्चे बाहर बैठे थे ऑपरेशन थिएटर, उनसे मैं मिलकर आ गया था और मैं कह रहा हूं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूं, और आपस में डॉक्टर बात कर रहे हैं ये तो मर गया, खत्म. बट ही इज, इट इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. और जो तीसरी चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसको हम PLR कहते हैं. पास्ट लाइफ में ले जाते हैं. एक हमारे पास आए थे सोल्जर, वो अपना अनुभव सुना रहे थे, सोल्जर नहीं थे पर अपना अनुभव सुना रहे थे कि मुझे बचपन से यहां पर बहुत दर्द रहता था, बहुत दर्द. हमने बहुत कुछ इलाज कराया पर कोई का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्यों ये दर्द रहता है, क्यों दर्द रहता है. तो उनका फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले गए, और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले गए तो पता चला कि एक जन्म में वो सोल्जर था और उसको यहां गोली लगी थी, इसी स्थान पर गोली लगी थी, और वो गोली का दर्द इतना था जो वो असहनीय था और खून बह गया और उसमें मर गया. तो वो जो अनुभव था वो आगे जन्म में भी ले गया, और उस जन्म में इसको दर्द ही दर्द हो रहा है जबकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकल. तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उसको खत्म कर देते हैं, उसकी वो वॉश आउट कर देते हैं, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस या वो मेमोरीज. और फ्यूचर कई बताने वाले हैं, फ्यूचर फॉरकास्ट करते हैं, भविष्य बताते हैं. कैसे भविष्य बताते हैं? उनके आगे भविष्य जिसे दिखाई देता है, अब तक हुआ नहीं है वो. तो ये भी तो संस्कार है ना, जो भविष्य का भी संस्कार, भविष्य में क्या होगा. अब ये सब बातें सिद्ध करती है कि ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, ये जन्म ही सब कुछ नहीं है. तो मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं. अब आत्मा वो ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, चमकता हुआ एक अजब सितारा है कहते हैं. इसकी इसको यहाँ त्रिकुटी भी कहते हैं, दो भ्रुकुटी ये कहते हैं तो ये त्रिकुटी कहते हैं, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, द थर्ड आई ऑफ विजडम, ये आत्मा की निशानी है। तो आज्ञा चक्र कहो, तीसरी आंख कहो, ये आत्मा आज्ञा करती है इंद्रियों को, आई एम द मास्टर ऑफ माई सेंसेस। तो जब हम राजयोग करते हैं, इट इज टोटली ऑपोजिट टू हठ योग, टोटली ऑपोजिट। हठ योग में कई शारीरिक आसन करते हैं और लास्ट में कहेंगे रिलैक्स रिलैक्स, हमें पाँव नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, वो नहीं हो, और फिर ऊपर आ जाओ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब राजयोग में हम स्टार्ट ही यहां से करते हैं, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर विद द फर्स्ट थॉट, हु एम आई, और उसका आंसर मैं खुद को ही देती हूं, मैं एक आत्मा हूं। अब पहला आंसर मैंने दे दिया, मैं एक आत्मा हूं, फिर आत्मा कैसी हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता एक सितारा हूं, इन आंखों से नहीं देख सकती हूं अपने आप को भी, ज्ञान का नेत्र चाहिए, ज्ञान का आईना चाहिए जिससे आत्मा खुद को समझ सके देख सके। तो जैसे मैंने ये अंदर में संकल्प किया कि मैं वो आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश पुंज हूं, चमकता हुआ एक सितारा हूं, आई एम द मास्टर ऑफ माई सेंसेस, मैं इंद्रियों का मालिक हूं। जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठता है और जैसे ड्राइवर बैठता है तो गाड़ी को स्टार्ट करता, आजकल चाबी भी नहीं है, बस बटन दबाया गाड़ी स्टार्ट, इंजन स्टार्ट। तो मैं यहां बैठ करके इन इंद्रियों का मालिक बन करके इन इंद्रियों को चलाऊं, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं, आत्मा इस मुख से बोल रही हूं, आत्मा इन कानों से सुन रही हूं, अब नहीं बोलना है चुप, मैं आई कैन कीप माई सेल्फ क्वाइट, आई डोंट हैव टू स्पीक, आई कैन शट अप इमीडिएटली, आई एम द मास्टर ऑफ माई माउथ। नहीं देखना है नहीं देखो, नहीं सुनना है नहीं सुनो, यू आर द मास्टर। नहीं सोचना है नहीं सोचो, ये भी हो सकता है, यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड एज वेल। तो आत्मा को पहचानना मुश्किल नहीं है, यू हैव टू जस्ट हैव स्टार्ट विद दैट फीलिंग, आई एम द मास्टर ऑफ माई सेंसेस। और फिर जैसे कल भी बताया, वॉट इज एजुकेशन, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन, यू आर रियली वेरी परफेक्ट इन योर इनर सेल्फ। इसीलिए कहते हैं ना, जब आपको शांति चाहिए अंदर जाओ, खुशी चाहिए अंदर जाओ, शक्ति चाहिए अंदर से पाओ, एवरीथिंग इज विद इन यू। व्हाट डू यू मीन बाय विद इन यू, किसके विद इन, शरीर के विद इन थोड़ी है शांति और खुशी और प्रेम, ये तो जड़ चीज है। इवन नॉलेज इज विद इन यू, ट्रू एनलाइटनमेंट कम्स फ्रॉम विद इन, यही तो एजुकेशन है, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। इसीलिए कबीर का बहुत सुंदर दोहा है ना, पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लो वही पंडित होए। तो वो प्रेम बाहर से नहीं आता है, वो पोथी पढ़ने से नहीं आता है, वो अंदर से आता है। तो अंदर से आना माना नॉलेज ऑल्सो इज फ्रॉम विद इन, वॉट यू हियर फ्रॉम आउटसाइड इज इंफॉर्मेशन। बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड knowledge. Knowledge comes from within. Even a small child has knowledge, but he should not tell lies. It doesn't have to be told. बच्चा को ये बोलना नहीं पड़ता है तुम सच बोलो, वो सच ही बोलता है, लेकिन हम उसको झूठ बोलना सिखाते हैं। झूठ बोलता नहीं है, और कई बार वो झूठ सुन लेता है तो झूठ बोलना तो आता नहीं, तो वो झूठ भी सच के रूप में ही बोलता है, है ना। हम लोग मिसाल देते, एक चित्र दिखाते हैं, फोन आया अभी तो मोबाइल है, पहले तो वो लैंडलाइन था, तो फोन आता है तो बच्चा उठाता है, कौन, तो डैडी है, बात डैडी से बात करनी है। अब डैडी के पास, डैडी आपके लिए फोन है, तो डैडी कहता है पहले पूछो कौन है, तो पूछता डैडी तो आप कौन, का फलाना, फिर डैडी को बोलता, डैडी कहता उसको बोलो घर में नहीं है पिताजी, फादर इज नॉट एट होम। अब वो कहता है डैडी कहता है मैं घर में नहीं हूं, डैडी कहता है मैं घर में नहीं हूं, माना है डैडी लेकिन वो कहता है मैं घर में नहीं हूं। अब बताओ, तो बच्चा तो सच्चा है, बाप ने झूठ बोलना सिखाया। तो इसीलिए ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम विद इन। हर आत्मा अपने असली स्वभाव में ज्ञान स्वरूप है, और जब ये ज्ञान है तो फिर उसी के आधार से प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, ये भी आत्मा का ही गुण है। जब मन में कोई बुरे विचार आते हैं ना, तुरंत यू फील गिल्टी विद इन, यू आर नॉट रियली कंफर्टेबल बिकॉज दैट्स नॉट योर ट्रू नेचर, प्यूरिटी ऑफ थॉट्स। और जहां प्यूरिटी ऑफ थॉट्स है वहीं पीस है। यू कैनॉट एक्सपीरियंस पीस विदाउट प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, बिकॉज वॉट इज पीस, इट इज योर ट्रू सेल्फ। आप वही आत्मा हो जो शांत स्वरूप हो, और जहां पीस है, शांति है, वहीं प्रेम है। ये आत्मिक प्रेम है। शारीरिक प्रेम ये विकार बन जाता है, ये काम वासना बन जाता है। कुछ भी शारीरिक है वो विकार बन जाएगा, इंद्रियों का आकर्षण धीरे धीरे विकार बन जाएगा। इसका बहुत डिटेल है। और जहां वो सात्विक प्रेम है वहीं सच्चा सुख है, सच्ची खुशी है, जिसको हम कहते हैं आत्मिक सुख। और जहां वो सुख है वहीं आनंद है। आनंद इज द एक्सट्रीम ऑफ आत्मिक सुख। जैसे हम संत महात्माओं का नाम जब लेते हैं ना, उनको जो नाम मिलता है when they become sannyasis, तो वो नाम क्या होते हैं, सच्चिदानंद स्वामी, प्रेमानंद, धर्मानंद, आत्मानंद, विवेकानंद, तो लास्ट वर्ड क्या है, आनंद। सो आनंद इज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल वर्ड, लेकिन हम लोगों ने उसको बड़ा फिजिकल ले लिया। आज कुछ चटपटी चीज खा ली, वाह 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 बड़ा आनंद आ गया। आनंद इज नॉट दैट, आनंद इज अ वेरी स्पिरिचुअल वर्ड। कोई अच्छी फिल्म, बड़ी मजेदार फिल्म, बड़ा आनंद आ गया। ये संगीत सुन लिया, बड़ा आनंद आ गया। लेकिन बहुत जोर से वो संगीत सुनो तो आनंद तो एक सेकंड में खत्म हो जाएगा, आपका कान का पर्दा ही फट जाएगा। वो क्या आनंद आया। और सचमुच जहां ये नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस है, वहीं वास्तव में विल पावर है। वो विल पावर आती जिसको हम आत्मबल कहते हैं। वो आत्मबल तब आए जब ये छह और भी गुण अंदर से अनुभव हो। इसलिए विल पावर कम्स फ्रॉम विद इन, इट विल नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड। अब ये आत्मा की शक्तियां हैं, इसीलिए इनको अगर आप अनुभव करना चाहते हो तो अंदर में जाओ। अब वो अंदर में जाना माना अपने आप को इतना हल्का समझना, मैं एक आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप। इट इज ये जैसे आत्मा को बोध होता है, इट्स एनलाइटनमेंट। इट इज अंदर में अपनी पहचान अनुभव करते। इसलिए आपसे हमने 3 बार ओम शांति कहलवाया। ओम शब्द में बहुत गहराई है। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है, ए यू एम इंग्लिश में जब लिखते हैं, अ उम अ उम अ फिर उ फिर म, अ उम दैट इज मी। नाउ व्हाट इज दैट विच इज मी, ओम शांति, आई एम दैट विच इज पीस। तो आई एम दैट, वो ही मैं, कौन, शांत स्वरूप आत्मा। और जब हम अपने आप को उस शांत स्थिति में चिंतन करते हैं, मैं एक आत्मा हूं, मेरा स्वभाव शांति है, तो फिर दोबारा शांति, ओम शांति 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 3 बार कहते हैं। कई अर्थ लेते हैं, लेकिन जिस अर्थ से हम मेडिटेशन करते हैं उसमें दूसरी बार शांति का मतलब है कि जिस धाम से मैं आत्मा आई हूं वो शांति का धाम है। ये संसार मेरा घर नहीं है, ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, ये दो दिन के मेहमान है हम इस संसार में। शेक्सपियर ने भी कहा, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग आर रिस्पेक्टिव रोल्स। सो हु इज द एक्टर? सो सोल इज द एक्टर। ये शरीर तो ड्रेस है, ये शरीर रूपी वस्त्र पहन करके हम एक्टिंग करते हैं। तो एक्टर हूं मैं, एक्टर का घर मंच नहीं होता है, वो तो केवल एक्टिंग करने का स्थान होता है, घर तो उसका अपना होता है अलग से। तो ये दुनिया हमारा घर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। जैसे एक्टर पार्ट बजाता है, बड़ा सुंदर घर उसको मिलता है पार्ट बजाने लिए, अब सब चीजें जो है वो वहीं की वहीं है, वो घर नहीं ले जाएगा, वो तो स्टेज की चीजें है ना, वो घर ले जाने लिए थोड़ी है, यूज करने लिए है बस। घर जाएगा तो बस जो उसके अपने कपड़े थे वही पहन के जाएगा बस, वहां की चीजें थोड़ी ले जाएगा। और जो उस मंच पर उनको और रिश्तेदार मिले वो भी वापस अपने अपने घर चले जाएंगे, उनके साथ थोड़ी आएंगे। फिल्म में या ड्रामा में उसकी पत्नी बनी, अब ड्रामा पूरा हो गया तो उसको पत्नी बना के ले जाएगा क्या? वो तो एक्टिंग के लिए ही थे, वो स्टेज के लिए ही थे। तो ये जितने भी रिश्ते नाते ये सब हमारे पाठधारी एक्टर्स हैं। कर्मों अनुसार संबंध हुआ, और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, ईच वन इज ऑन हिज ओन जर्नी। तो कितना बड़ा धोखा हम अपने आप को देते हैं जब हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि संसार की कोई वस्तु हम नहीं ले जाएंगे। यहां तक कि जिस शरीर के लिए हम इतना कर रहे हैं, आत्मा जाएगी तो शरीर से भी नहीं पूछेगी मैं जाऊं, वो तो पंछी है, पंछी आया दाना चुगा उड़ा, वो बसेरा नहीं बनाता, वो उसका तो आशियाना आकाश है। तो इसीलिए जब हम ये महसूस करते हैं मैं एक आत्मा, एक पंछी की तरह, एक मुसाफिर की तरह हूं, एक एक्टर की तरह हूं, ये संसार मेरा घर नहीं है, तो मोह कहीं नहीं जाएगा, प्रेम सबके साथ होगा। क्यों? क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, सब एक पिता परमात्मा की संतान है। और ये जब अनुभव किया तो वो तीसरी शांति, ओम शांति शांति शांति, वो फिर आपको कल बताएंगे। परमात्मा जो शांति का सागर है उनके बच्चे हैं। तो मेरा स्वभाव भी शांति, मेरा धाम भी शांति का धाम, मेरा पिता भी शांति का सागर। और जब ये हमने अनुभव किया तो महसूस होता है वो शांति का धाम एक सेकंड में मन वहां चला जाता है, जो पांच तत्वों से पार इस साकार दुनिया, आकारी दुनिया है और निराकारी दुनिया, उस निराकारी दुनिया में मेरा असली धाम है। तो क्या अनुभव करते हैं कि जैसे पांच तत्वों से पार, जहां सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वो आत्मा का धाम है। तो ऐसे वो मन बुद्धि से आत्मा जैसे पंख लगा के उड़ी एक सेकंड में, और ऐसे महसूस करे वो अखंड ज्योति का महतत्व है, सुनहरा लाल प्रकाश, उसमें मैं आत्मा एक ज्योति विराजमान हूं। इस संसार से, भौतिकता से, पंच तत्वों से बिल्कुल परे, आवाज से बिल्कुल परे एक ज्योति। तो मैं वो ज्योति हूं, आत्मा हूं, जिसको सोल कहो, स्पिरिट कहो, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद की स्वरूप हूं। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर यहां विराजमान हूं, ये मेरा अकाल तख्त है। जैसे अकाल तख्त दिखाते थे अमृतसर में, ये अकाल आत्मा जो कभी मरती नहीं वो इस तख्त पर विराजमान है। और मेरा असली धाम परम धाम है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है। आप लोग परिचय पत्र जब भरते हो तो उसमें दो एड्रेस लिखते हो, एक एड्रेस है टेम्पररी एड्रेस और दूसरी एड्रेस होती है परमानेंट एड्रेस। तो टेम्प्ररी एड्रेस तो बदलती रहती है, परमानेंट एड्रेस तो एक ही रहती है। तो आत्मा की परमानेंट एड्रेस वो आत्माओं का लोक है, पर एक सेकंड में उस लोक में जा सकते हो, इस देह से न्यारा हो सकते हो। जैसे शरीर पर वस्त्र पड़े हैं, ये शरीर से अलग है, तो देह भी एक वस्त्र है जो वास्तव में मुझ आत्मा से अलग है, और मैं आत्मा उस धाम से इस सृष्टि मंच पर आई, ये सृष्टि रंग मंच है, जहां पाठ बजाने आई, ये वस्त्र धारण किया, अब मैं डिटैच होकर के वापस उस धाम में जा रही हूं। अब ये अनुभव करना, सो व्हाट इज मेडिटेशन, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन, वो परफेक्शन को प्रकट करना, दैट इज रियल एजुकेशन, वो विद्या जो हमें मुक्त करे, इस बंधनों से मुक्त करे। अब जब उसको हम समझते हैं तो नाउ आई स्टार्ट जर्नी, जिसको हम कहते हैं विचार सागर मंथन, मनन करना, चिंतन करना, एंड ड्रॉ आउट व्हाट इज विद इन। तो व्हाट डू यू ड्रॉ आउट व्हाट इज विद इन, कि मैं नाइदर, न मैं ये शरीर हूं, न मैं ये रोल हूं, मैं पति हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये सब रोल है, रोल्स आर मेनी, पर आइडेंटिटी इज ओनली वन। कोई एक्टर कितने रोल बजाता है, पर आइडेंटिटी तो उसकी वही रहेगी ना। तो आई एम नाइदर द बॉडी नॉर द रोल, बट आई एम एन एक्टर ऑन दिस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज, सो आई कैन डिटैच माई माइंड एंड जस्ट ऑब्जर्व द फिजिकल थिंग्स हैपनिंग, बट आई नीड नॉट बी अटैच्ड टू देम, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई आईज एज वेल। I need not hear, I may be, you know, able to hear, you know, hear many things, but I don't have to listen. So hearing and listening is so different. I may be seeing, but I'm not watching. You know, तो इसीलिए seeing and still not seeing, hearing and still not hearing, I can do that. तो मैं कैसे इस शरीर से न्यारी आत्मा हूं? And when I understand this, I accept only positive vibrations, positive emotions, positive feelings, and reject all negative things. It's up to me. क्योंकि बुद्धि से मैंने जो नहीं चाहिए उसको reject कर लिया। वो दो कान किस लिए मिले? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। Why should it enter me and spoil my stage? अब इसको जब हमने महसूस किया, then I start my meditation. So let us start our meditation. We will sit for 5 minutes and what do we churn within? वो हमें देखना है। सीधा बैठेंगे। You can keep your body relaxed. No need to be stern. So relax. और अपने मन में चिंतन लाए। यू कैन कीप योर आईज ओपन। आगे सामने देखेंगे, आत्मा को महसूस करेंगे। अपने आप से पूछे, मैं कौन हूं? अंतरात्मा उत्तर देगी, मैं एक आत्मा हूं फील दैट आत्मा, एक ज्योति हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, ब्रह्मकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूं, अपने आप को मस्तक पर अनुभव करें, मैं आत्मा चमक रही हूं। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है। जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर अभिनय कर रही हूं। अब अपने आप को इस देह रूपी वस्त्र से डिटैच करें। बिल्कुल हल्के हो जाए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है, स्वरूप है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में व्याप्त है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। चले जाइए शांति की गहराई में। शांति का गहन अनुभव कीजिए। फिर याद कीजिए अपने धाम को। मैं आत्मा कहां से आई हूं? मन और बुद्धि पांच तत्वों से उड़ जाए। पांच तत्वों से पार जहां सूर्य चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, वो मेरा शांति धाम है। एक सेकंड में मन बुद्धि से मैं आत्मा वहां पहुंच जाऊं। अखंड ज्योति का एक महत्त्व है, सुनहरा लाल प्रकाश। असीम शांति ही शांति। यही मुझ आत्मा का मूल वतन है। मेरा असली धाम। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रही हूं। अब इसी शक्ति को अपने में समा कर वापिस लौटे कर्म क्षेत्र पर, सृष्टि मंच पर, अपने शरीर में और भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। अब आप जो भी कर्म करेंगे वो उसी शांति की अनुभूति से करेंगे। इसी को कहा जाता है आत्म अभिमानी स्थिति। आत्मा का अनुभव हर कर्म में करेंगे। ओम शांति शांति।